अध्याय दो श्लोक संख्या 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भाषांतर। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो श्लोक संख्या 45 44 नंबर के श्लोक में हमने देखा, हमने चर्चा की, उसमें क्या भगवान कहते हैं। भगवान वेदों में जो पुष्पिता वाणी है, वेदों की जो अलंकारिक भाषा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो ऐसी भाषा है, वेदों में एक अलंकारिक या पुष्पिता इस प्रकार की भाषा है, जिस भाषा की ओर कोई जीव आकर्षित हो जाते हैं, है ना? ऐसी भाषा है जिसके प्रति साधारण जीव आकर्षित हो जाते हैं। क्यों आकर्षित हो जाते हैं? क्योंकि उनको भोग और ऐश्वर्य चाहिए। जो जीवों को भोग और ऐश्वर्य चाहिए, जो भोग करना चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं इस भौतिक संसार में, वो लोग इस वेदों की पुष्पिता वाणी की ओर आकर्षित होते हैं। कौन आकर्षित होता है? जिनको भोग भोगना है, जिनको ऐश्वर्य चाहिए, जिनको भौतिक संसार में ही रहना है, यहीं पे अपना घर बनाना है, परमानेंट, यही हमारा परमानेंट घर है। ऐसा जो सोचते हैं, वो वास्तव में यहाँ कोई परमानेंट घर नहीं बना सकता। कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। परंतु ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे भोगों का भोग करेंगे, बहुत सारे ऐश्वर्य को हमको यहीं पे प्राप्त करना है। और यह प्राप्त करने के लिए फिर जो अनेकों उपाय बताए गए हैं वेदों में, उन उपायों को, उन अनुष्ठानों को करते हैं, और यह सब प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। परंतु इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस प्रकार की भाषा इनसे प्रभावित मत हो। वेदों में जो अलंकारिक भाषा है, पुष्पिता वाणी, जो अलंकारिक भाषा है, इससे प्रभावित मत हो। यह बात बताते वक्त इस श्लोक में भगवान कहते हैं, छह प्रकार की शिक्षा देते हैं इस श्लोक में भगवान। छह शिक्षा है इस श्लोक में, किस लिए दे रहे छह शिक्षा है? यह बताने के लिए कि हे अर्जुन, ये जो अभी तक हमने चर्चा की है वैदिक भाषा, वेदों की जो अलंकारिक भाषा है, इसमें मत फंसो। कोई आपको कहे कि हे काली कलकत्ते वाली, तेरा क्या है, तेरा वचन न जाए खाली, ओम फट, तो इस प्रकार की भाषा को, इस प्रकार के वाणी को प्रभावित मत हो। और जो वेदों में, जो वास्तविक वेदों का वास्तविक जो भाषा है, वेद वास्तविकता जो बताना चाहते हैं, वह कृष्ण भक्ति, वह समर्पण, वह भक्ति भाव, शुद्धता, शुद्ध हृदय, यह सब बातें वेद बताते हैं। तो इन बातों को वेदों में से लो। तो यही बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान इस श्लोक में छह शिक्षाएं देते हैं अर्जुन को। तो पहली शिक्षा है क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा। पहला शब्द क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेदों में मुख्यतः तीन गुणों का वर्णन है, है ना? हम सभी तो जानते हैं गुण कौन से हैं। कोई है जो नहीं जानते तीन गुण कौन से हैं? सब जानते हैं, तीनों गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला जो वेदों की पुष्पित वाणी है, भौतिक प्रकृति में आसक्त व्यक्तियों को क्रमशः ऊपर उठाने के लिए है, जो अभी तक हम चर्चा किए थे। भगवान इस श्लोक में यह बात बताना चाहते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वेद, भगवान कहते हैं कि वेदों का मैं ज्ञाता हूं, वेदों का मैं निर्माता हूं, वेद मेरे से ही आते हैं। जब इतना सब सारे वेद जब भगवान से ही आते हैं, तो भगवान यहाँ पे इसके पहले श्लोक में ऐसे क्यों कहे कि वेदों के वाणी को उसके प्रभाव में बताओ। एक और तो कह रहे हैं कि मैं ही वेदों का मैंने ही, मेरे से ही वेद आते हैं, मैं ही ज्ञाता हूं, मैं सब कुछ हूं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि यह वाणी इसलिए है, वेदों की पुष्पिता अर्थात अलंकारिक वाणी वेदों में इसलिए है, ताकि जिस किसी स्थिति में ये जीव है, इस प्रकृति में जिस किसी स्थिति में ये जीव है, उस स्थिति से ऊपर उठे, उसकी प्रगति हो। तो कोई जीव तामसिक अवस्था में है, कोई जीव राजसिक अवस्था में है, कोई जीव सात्विक अवस्था में है। तो कोई भी जीव कहीं पे भी होने दीजिए, उनकी क्रमशः प्रगति होने के लिए वेदों में इस बात का, इस भाषा का वर्णन है। तो तीन गुण क्या है? तो तीन गुण है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वर्ग के भोग चाहिए। तो सत्वगुणी व्यक्ति को यदि स्वर्ग के भोग चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो वो स्वर्ग में जाने का प्रयास करता है, वहां जाने के लिए वो कुछ अनुष्ठान करता है, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है कि टिकट निकाला कि पहुंच गए, या कोई रॉकेट भेज दिया नीचे से बैठ के सीधा इंद्रलोक। कितने भी रॉकेट छोड़े इंद्रलोक, कोई गया अभी तक रॉकेट? कोई नहीं गया, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया, कोई रॉकेट नहीं गया, कोई नहीं गया है। तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए अनुष्ठानों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना? तो स्वर्ग लोक में वो लोग जाना चाहते हैं जो सात्विक स्तर पे है, और वो सात्विक स्तर को प्राप्त करते हैं कुछ अनुष्ठानों के द्वारा, और स्वर्ग उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के पश्चात वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे वो सुखों का भोग करते हैं, जब तक उनके अकाउंट में बैलेंस है तब तक। बैलेंस खत्म हो गया कि फिर से जन्म लेते हैं, परंतु सात्विक भाव का होने के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके लिए जो अनुष्ठान करना होता है, उसमें वो अनुष्ठानों का वर्णन वेदों में है। और भगवान अर्जुन को कह रहे कि यह इसलिए है यह वेद का वर्णन, क्योंकि यह लोग जो सात्विक है यह अनुष्ठान करने के पश्चात, स्वर्ग का भोग करने के पश्चात, यह सब का अनुभव लेने के पश्चात उनको कहीं तो समझ में आ जाता है नहीं नहीं इससे भी ऊपर जाना है, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, यहां से तो फिर वापिस आना पड़ता है। हाँ, तो उसके अंदर का जो भोग सात्विक रह के, शुद्ध सात्विक रह के, सात्विक स्तर पर रहते हुए यह भोग करने की जो उसकी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है जब वो दूसरा जन्म लेता है। तो दूसरे जन्म में उसका क्या हो जाता है, दूसरे जन्म में वो यह सोचता है पिछले जन्म में तो मैं सात्विक था, बहुत सारे वेदों के अनुष्ठान किए, वेदों में जो पुष्पिता वाणी है वह सब वाणी के अनुसार, वेदों में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार तो मैंने बहुत सारे अनुष्ठान किए, अनुष्ठान करने के पश्चात मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया और स्वर्ग में सारे भोग किए और सारे भोग करने के पश्चात क्या हुआ, अकाउंट खाली हो गया। अकाउंट खाली होने के पश्चात फिर से क्या करना पड़ा, फिर से यहां आना पड़ा। अब जब यहां आ गया हूं फिर से, तो अब सेम मिस्टेक नहीं करूंगा, है ना। इससे भी ऊपर जो कुछ भी जाता है, जहां कहीं भी जाना है, जो कोई भी मुझे रास्ता दिखाएगा इसके ऊपर का, वहां मुझे जाना है। भगवान यहां पे यही कह रहे हैं कि वेदों में जो पुष्पिता वाणी है वो सात्विक स्तर के जो लोग हैं, एक बार भोग ऐश्वर्य जो है स्वर्ग का सुख भोग लिया, उसके पश्चात उनको शुद्ध सात्विक स्तर पे ले जाना है, मतलब उसके भी ऊपर के स्तर पे ले जाने के लिए वेदों में इस वाणी का उपयोग किया गया है, है कि नहीं। अर्थात जो लोग सात्विक है, जो कहते हैं कि प्रभु जी हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, सुबह जल्दी उठते हैं, अपने परिवार के सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण करते हैं, मेरे से कोई मेरे परिवार में नाराज नहीं है, मेरे समाज में कोई नाराज नहीं है, पड़ोसी अड़ोसी सब मेरे से प्रसन्न है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अब क्या चाहिए। सात्विक है, कभी कभी पूजा पाठ कर लेते हैं, शुक्रवार को देवी का पाठ करते हैं, मंगलवार को बजरंग बली का पाठ करते हैं, जितने भी देवी देवता है सभी के दिन के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। भगवान कहते इस स्तर से भी ऊपर उठो। यही पे रुक के अपना ही संतुष्ट होना नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक संतुष्टि नहीं है। यहाँ मन शांत हो रहा है, मन को अच्छा मनोरंजन हो रहा है, पर आत्मा संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं इसलिए इसके भी ऊपर उठो, क्योंकि जो लोग इस प्रकार से इस वाणी का उपयोग करते हैं, इस वाणी से प्रभावित होते हैं, वो लोग भी इससे ऊपर उठ जाते हैं धीरे धीरे क्रमशः। तो यह रजोगुणी व्यक्ति है, भागवतम में बहुत बार वर्णन है, पर भागवतम में विशेषकर मथुरा के ब्राह्मणों की कथा आती है दशम स्कंद में। मथुरा के ब्राह्मण बहुत बड़े अनुष्ठान किए, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, वो सब जानते थे, सारे वैदिक अनुष्ठानों में निपुण थे है, और उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ के द्वारा, उस अनुष्ठान वैदिक अनुष्ठान के द्वारा उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, है ना। तो स्वर्ग की प्राप्ति होने के पश्चात वो शुद्ध सात्विक स्तर पे आए और भगवान कृष्ण को समर्पित हुए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण को या भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है, केवल सात्विक स्तर पे रह के काम बनेगा नहीं, रिटर्न टिकट है वो। रिटर्न टिकट चाहिए किसको, रिटर्न टिकट हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सा टिकट चाहिए, सिंगल वन वे, सब बस जाना है, रिटर्न टिकट नहीं निकालना है, बाकी सारे जगह सारे जो यहाँ पे गुण बताए हैं, ये सारे रिटर्न टिकट देते हैं हमको। दूसरा गुण कहा गया है रजोगुण। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति राज्य, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, संतति, ऐश्वर्य और पुत्र वगैरह जो चाहते हैं, जो प्रकृति के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनको कहते हैं रजोगुणी। वो लोग रजोगुण में स्थित है। कहां पे? रजोगुण। पहले कौन हुए? यहां कहा गया भगवान त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों में मुख्यतः तीन गुणों का वर्णन है। उन तीन गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले जो होते हैं सात्विक होते हैं, दूसरे जो होते हैं राजसिक होते हैं। राजसिक व्यक्ति का परिचय क्या है? राजसिक व्यक्ति का परिचय यह है कि वो पुत्र, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, संतति, इसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं, इन बातों से प्रभावित होते हैं और इन सब को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। वो अनुष्ठानों का भी वर्णन वेदों में है। हाँ? आप कहेंगे वेदों में क्या क्या है? जो नहीं करना है वो भी है, जो करना है वो भी है, क्या करे क्या न करे। हाँ? तो भगवान इसलिए इस श्लोक में बहुत विस्तार से समझाते हैं। तो जो लोग इसी भाव में रहते हैं, बस मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे मेरा वंशज चाहिए, इसी भाव में जो रहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए हम सबको बोलते हैं, तुरंत प्रश्न आता है बोलते से ही, इससे क्या लाभ? क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा धन वगैरह मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी? तो जो लोग स्त्री, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, संतति, इन सब को प्रति आकर्षित रहते हैं और इसी को अपना, इसी को प्राप्त करना अपने जीवन का ध्येय समझते हैं, वो लोग राजसिक है। ठीक है, राजसिक है तो क्या इनके लिए कोई रास्ता नहीं है तरक्की का? क्या प्रोग्रेस का इनके, इनके सारे रास्ते, प्रगति के सारे रास्ते इनके लिए बंद हो गए? हम राजसिक हैं तो क्या रास्ते बंद हो गए? भगवान बहुत दयालु है। भगवान बहुत दयालु है, कभी भी कोई भी रास्ता बंद नहीं करते, सारे रास्ते खुले रखते हैं। कभी भी भगवान की ओर से रास्ता बंद नहीं होता है। भले ही राजसिक है फिर भी रास्ता दे दिया कि ठीक है, अपने इस रजसिक भाव को, अपने इस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के इस स्वभाव को थोड़ा 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 नियंत्रित करते जाओ। हाँ? कैसे नियंत्रित करोगे? तो नियंत्रित करने की विधि जो है वो वेदों में दी गई है। अनेक प्रकार के अनुष्ठान करके हम अपने इस राजसिक गुण को कम कर सकते हैं। तो भगवान ने ऑप्शन दिया है, यदि हम चाहे तो, चॉइस इज योर्स। कभी कभी कोई कहते हैं भगवान करेंगे तो स्वीकार करेंगे, भगवान देंगे या भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे तो ही हम इन बातों का स्वीकार करेंगे, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम जैसे है वैसे ही बहुत अच्छे हैं। करना तो भगवान ने चाहिए, हमने क्या करना चाहिए? इसके पहले इस बात पे चर्चा हुई कि किसने क्या करना चाहिए, है ना? किसने क्या करना चाहिए? मनुष्य ने क्या करना चाहिए? साधारण जीव ने क्या करना चाहिए? और भगवान ने क्या करना चाहिए? भगवान ने क्या करना चाहिए वो तो पूरी तरह से कर रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कभी कभी आउट ऑफ वे भी चले जाते हैं। भगवान इतनी चिंता करते हैं भक्तों की कि कभी कभी रास्ते से अपना आउट ऑफ वे कायदे कानून भी तोड़ देते हैं, नियम सारे तोड़ देते हैं। इसके पहले हम चर्चा हुई है, द्रौपदी का उदाहरण याद है सबको, स्मरण में है? द्रौपदी के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। द्रौपदी की चप्पल तक उठाए भगवान, द्रौपदी के लिए साड़ी पहने भगवान, है ना? तो वो तो बहुत कुछ करते हैं, करते रहेंगे। गलती हमारी होती है, हम कहीं तो भी त्रुटि हमारे अंदर है या हम करना नहीं चाहते, या तो हम गलती करते हैं या जानबूझ के हम करना नहीं चाहते। तो भगवान कह रहे कि यदि हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम करना भी नहीं चाहते हैं, ऊपर के स्तर पे जाना भी नहीं चाहते, तो भी भगवान ऑप्शन, तो भी भगवान रास्ते देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये अनुष्ठान करो। अर्थात आपकी इंद्रिय तृप्ति के जो इतने सारे भाव है उसको नियंत्रित करो। एवरीडे सातों के सातों दिन इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो ऐसा मत करो। मंगलवार का हनुमान का दिन है, गुरुवार का गुरु का दिन है, शुक्रवार का देवी का दिन है, रविवार का सूर्य का दिन है, ये दिनों में ये फलाने फलाने मंत्र बोलो और इंद्रिय तृप्ति को उस दिन मत करो, थोड़ा नियंत्रित रहो, है ना। तो इस प्रकार से वेदों की वाणी राजसिक गुणों वाले व्यक्तियों को भी ऊपर उठाने की रास्ते देते हैं। मतलब वैदिक भाषा उन लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं जो कि इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, तो उनका प्रमोशन हो जाता है अनुष्ठान करने से। फिर तीसरा क्या है, जैसे आपको उदाहरण होगा शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि अब राक्षसों का पतन हो रहा है, हार हो रहे हैं, हार रहे हैं युद्ध में, उन्होंने बलि महाराज को बुला के बहुत बड़ा यज्ञ किया अनुष्ठान। वो यज्ञ करने का संकल्प क्या था, यज्ञ इसलिए उन्होंने किया, प्रयोजन क्या था, तो प्रयोजन यह था कि ऐश्वर्य संपत्ति और राज्य प्राप्त हो राक्षसों को। मतलब उनको, राक्षसों को यदि ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होगी तो उनकी जो स्थिति है, उनकी जो पोजीशन है, वो कायम रहेगी। तो वो भी अपने पोजीशन कुर्सी के लिए अनुष्ठान की सलाह दिए और उस यज्ञ से बहुत सुवर्ण रथ उत्पन्न हुआ, बड़े दिव्य घोड़े उसमें लगे हुए थे, दिव्य रथ आया और उस रथ पे आरूढ़ होकर बलि महाराज ने युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। यह है राजसिक भाव, राजसिक व्यक्ति, राजसिक लोगों के उदाहरण। अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कुछ भी करना, विशेषकर आध्यात्मिक कार्यकलाप या आध्यात्मिक सेवा के आधार पे इंद्रिय तृप्ति करना। अरे क्या है प्रभु जी, 16 माला जप किया है, कल किया, परसों किया, उसके पहले दिन किया, आज भी किया 16 माला जप, इसलिए आज शाम को सिनेमा देखने चले गए, एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति देखना चाहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहुत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विदियते। दृष्टि देखना, रूप, स्पर्श, गंध, गंध रूप स्पर्श और क्या है, स्वाद, इन सारी बातों में हम इतने पूरी तरह से जकड़ चुके हैं कि इससे ऊपर उठने का कोई प्रयत्न हम नहीं करते हैं। पर इससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो हम सब राक्षसी सेना हो जाएंगे और हमारे जो भी कोई इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए उनके गुरु कौन है, शुक्राचार्य। राक्षसी प्रवृत्ति है ये, सारा संसार भगवान के भोग के लिए, लेकिन हम भोग करना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान के साथ स्पर्धा करते हैं, स्पर्धा में हम टिक नहीं पाते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम, चल रहा है कार्यक्रम। तो इस प्रकार से इस रजोगुण से भी हमको ऊपर उठना है और यह वेदों में, ये रजोगुणी लोगों के लिए भी कुछ है, वेदों में रजोगुणी लोगों के लिए भी कुछ अरेंजमेंट है, तो वो करके उनका वो समझ जाते हैं और रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, सात्विक स्तर पे आ जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सात्विक बन जाते हैं। और फिर है तमोगुण, तो तमोगुण तो सब जानते हैं, तमोगुण अर्थात शराब पीना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, अशुद्ध रहना, आलस्य, झूठ बोलना, ये सब तमोगुणी लक्षण है। झूठ बोलना इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरों का नुकसान करने के लिए, ये सब तामसिक गुण है। तो ये जो लोग हैं इनको भी कुछ व्यवस्था बनाई है इनके लिए भी वेदों में। वह भी यदि कुछ पढ़ते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं वेदों के अनुसार, तो उनका भी कल्याण हो सकता है। अर्थात जो तामसिक स्तर पे है वो राजसिक स्तर पे आ सकते हैं, जो राजसिक स्तर पे है वो सात्विक स्तर पे आ सकते हैं, जो सात्विक स्तर पे है वो शुद्ध सात्विक स्तर पे आ सकते हैं। यह वेदों का प्रयोजन है। वेदों का क्या प्रयोजन है? तो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की, जिस किसी भी वो अवस्था में वो होगा, प्रत्येक अवस्था में उसकी प्रगति कराना, यह वेदों का मुख्य प्रयोजन है। यह भगवान यहाँ पे कह रहे। इसलिए कंफ्यूजन, कोई भी भ्रम या किसी भी प्रकार का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत समझ वेदों के बारे में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह बात, प्रश्न, ये प्रश्न मन में आ सकता है कि इसके पहले भगवान कहे कि मैंने, वेद मेरे से उत्पन्न हुए हैं, और अब भगवान कह रहे कि वेदों के वाणी से प्रभावित मत हो, है ना? दो बातें हैं। तो किस प्रकार से, कौन सी वाणी से प्रभावित नहीं होना है? जो वाणी में इस प्रकार के अनुष्ठान का वर्णन है, जो अनुष्ठान राजसिक, तामसिक, राजसिक और सात्विक लोगों के, सात्विक जीवों के लिए, उनकी प्रगति करने के लिए बताए गए हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे, आप इनसे भी प्रभावित न हो, ऊपर उठो, इनसे आपको प्रभावित होना नहीं है। क्यों? क्योंकि 14वें अध्याय में 18वां श्लोक है, ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वम् गच्छति सत्वतः। ऊर्ध्व में कौन जाते हैं? ऊर्ध्वम् गच्छति सत्वतः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। ऊर्ध्व में जाते हैं सत्व, मध्यम तिष्ठति, मध्य मतलब भूलोक, ऊपर के लोगों में जाते हैं सत्व लोग, सात्विक लोग। मध्यम तिष्ठति राजसः, मध्य मतलब इस भूमि पे, इस भूलोक पे कौन रहते हैं? राजसिक। और बाकी क्या है? जघन्य गुण वृतस्थ, कौन? जघन्य गुण जो कर, जिनके अंदर जघन्य है, भयंकर गुण जिनके अंदर है, वो क्या होते हैं? जघन्य गुण वृतिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। वो अधोगति, हम ये शब्द जानते हैं अच्छी तरह से, उनकी अधोगति हो जाती है, वो नीचे के लोगों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि राजसिक, तामसिक, सात्विक, इन तीनों गुणों के ऊपर उठना है। भगवान बार 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 अर्जुन को इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। तो दूसरी बात, जो दूसरी शिक्षा जो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में दे रहे हो, क्या है? निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना। पहला क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदात निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुना। हे अर्जुन, तुम इन तीन गुणों के ऊपर उठो। अर्थात भगवान यहाँ पे वेदों का प्रयोजन बता रहे हैं, कि वेदों का प्रयोजन है कि तीनों गुणों के ऊपर सारे जीव उठ जाए, है ना? तो भगवान कहते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि वेदों की शिक्षाएं प्रकृति के तीन भौतिक गुणों पर आधारित है, परंतु हे अर्जुन, तुम वेदों के आंतरिक प्रयोजन को समझो। और केवल समझो मत, समझकर प्रकृति के इन तीन गुणों के ऊपर उठ जाओ, वेदों के आंतरिक भाव को समझो। कई बार प्रचार के लिए बाहर हम जाते हैं, भक्तगण बाहर जाते हैं, किसी को कुछ चर्चा करते हैं, तो तुरंत कोई वेदों का कोटेशन, वेद में क्या कहा गया है बता देते हैं। भगवान कैसे निर्गुण है? भगवान निर्गुण निराकार है, इस बात का वर्णन वेदों में है, वो बता देते हैं आपको। तो आप कहते हैं, आप तो, हम तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते, भगवान कृष्ण के निस्सीम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई व्यक्ति मिल जाते हो तो कहते हैं, भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, निराकार है भगवान, कोई निर्गुण है, वेदों में बताया गया है। तो यहां पे हमको यह समझना चाहिए कि भगवान क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं और वेदों में क्या है। विशेषकर इसलिए यहां पे भगवान विशेषकर बता रहे कि वेदों के आंतरिक भाव को समझो, अर्थात वेदों के आंतरिक भाव में भगवान के प्रति सब कुछ बताया गया है कि भगवान कौन है। पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? हाँ, पहली लाइन, पहला ही लाइन क्या है? शस्त्र शीर्षा शस्त्रपात, हे भगवान, भगवान का वर्णन है, भगवान के सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र पाद है पैर। तो जब भगवान के सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र पाद है, इतने बड़े भगवान ऐश्वर्यशाली है, और ये लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, और ये भी बात पुरुष सूक्त वेदों से ही आती है, सूक्त में से। तो यही वेद की बात हम उन लोगों को बता सकते हैं जब हम वेदों का आंतरिक भाव समझेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह बात कहते हैं, तात्पर्य ध्यान से पढ़ा होगा तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचकर कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वेदों का आंतरिक भाव है भगवान कृष्ण को अच्छे से जानना, भगवान कृष्ण को ठीक से समझना, यह वेदों का आंतरिक भाव है। हेंस प्रूव्ड, सिद्धांत सिद्ध हो गया। श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थितियों का वर्णन है, 11वें स्कंद में बताया गया है कि किस प्रकार से कृष्ण भक्ति सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है और उसको प्राप्त किस प्रकार से किया जा सकता है। 11वें स्कंद में 25वें अध्याय में 22 से 29 श्लोक तक इसका वर्णन है, 11.25.22-29, 7 श्लोक है। सत्व गुण में, सत्व गुण में जो शरीर होता है वो शरीर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, अर्थात मृत्यु के समय में व्यक्ति यदि सत्व गुण में है तो वो कहां जाएगा? स्वर्ग की प्राप्ति। उस दिन हमारी चर्चा हुई, याद है सबको, स्मरण में है, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, कैलाशवासी, हम कौन से वासी होना चाहते हैं? वैकुंठवासी, उसके भी ऊपर है गोलोकवासी। तो यहां पे जो चर्चा हो रही है स्वर्गवासी, जो तो चाहते हैं स्वर्गवासी बन जाए, क्यों चाहते हैं? भोग है इसलिए। सर्व इस भौतिक संसार के सबसे सर्वोच्च सबसे अच्छे भोग यदि कहीं पे है तो वह स्वर्ग में है। तो स्वर्गवासी सत्व गुण में शरीर का त्याग यदि कोई करता है तो स्वर्ग की फ्लाइट तैयार है, स्वर्ग का विमान, स्वर्ग की फ्लाइट रेडी है यदि सत्व गुण में हम कोई भी एक व्यक्ति कोई भी जीव शरीर का त्याग करता है तो। और यदि रजोगुण में जो व्यक्ति शरीर का त्याग करता है वो व्यक्ति फिर से इस लोक में आ जाता है, मनुष्य लोक में या पृथ्वी लोक में। क्या करता है यहां फिर से आके? भोग भोगते रहता है, जो कुछ भी पहले किया उसका फल चखते रहता है, जो कुछ भी पहले कर्म किए हैं उसका, जो कुछ भी फल मिल रहा है उसका टेस्ट लेते रहता है। इसलिए रजोगुण में जो व्यक्ति शरीर का त्याग करता है वो मनुष्य में पृथ्वी लोक में आता है। रजोगुण अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है वह व्यक्ति रजोगुणी है। इसी अवस्था में कोई यदि शरीर का त्याग करता है तो उसके पास रिटर्न टिकट उसको मिल जाता है। ऊपर जाके नीचे आना, नीचे आके ऊपर जाना, ऊपर जाके नीचे आना, नीचे आके फिर ऊपर जाना, ऐसा वो करते रहता है, मनुष्य लोक में रहता है। कभी गलती से कोई भक्त का दर्शन हो जाए तो हो सकता है उसका यह चक्र बंद हो जाए। तीसरा वर्णन है तमोगुण। यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में शरीर का त्याग करता है तो अधोगच्छति तामसः, उसकी अधोगति हो जाती है, वो निचले स्तर के लोगों में पहुंच जाता है, बिना कोई कष्ट के सीधे नीचे चला जाता है, डायरेक्ट परमिशन। हाँ, नर्क कहा गया है उसको, नर्क लोग में उसके प्रगति के, उसके कर्मों के अनुसार कोई अनेक प्रकार के लोग नीचे, सात प्रकार के, उसमें कहीं पे भी चला जाता है, नरकीय अवस्था प्राप्त कर लेता है, अर्थात वहां उसको बहुत प्रताड़ित होना पड़ता है। तीसरा तमोगुण है, परंतु भगवान कृष्ण की प्राप्ति कौन से अवस्था में प्राप्त होती है? सत्व में तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, रजो में तो फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है, तमो में तो नीचे नरक में जाना पड़ता है, पर हमको तो गोलोक में जाना है। जब हमको गोलोक में जाना है, कृष्ण लोक में जाना है, तो कौन से गुण का प्रभाव चाहिए? शुद्ध सत्व गुण का प्रभाव चाहिए। शुद्ध सत्व अर्थात जिसमें जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, जो कुछ भी एक्शन रिएक्शन जो कुछ भी करते हैं, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि यदासी, सब जो कुछ भी करते हैं, यद तपस्यासी कौन्तेय, वो सब भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, भगवान कृष्ण की शुद्ध सेवा भाव को आत्मसात करते हुए जो कुछ भी गुण हमको प्राप्त होता है, वो शुद्ध स्तर पे, शुद्ध सत्व के स्तर पे हमको ले जा सकता है, ले जाता ही है। और वो गुण, अभी आपने देखा तमस सत्व आपको, हमको मरते समय सात्विक है तो स्वर्ग में जाएंगे, मृत्यु के समय राजसिक है तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, यहाँ पे घर तो बांध के रखे हैं, यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, कुछ करेंगे कार्यकलाप। और तमा है तो नीचे नरक में चले जाएंगे मृत्यु के समय, और पर मृत्यु के समय यदि शुद्ध सात्विक भाव है, सेवा भाव है, श्री कृष्ण के धाम चले जाएंगे, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। दूसरी बात इसी श्लोक में बताया गया है, जो वन में निवास करते हैं वो सात्विक है, जो शहरों में निवास करते हैं वो राजसिक है। सही बात है क्या? जो शहरों में निवास करते हैं वो राजसिक है। हम तो शहर में ही निवास करते हैं तो हम लोग राजसिक है। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक प्रवचन में एक बार कहे थे, ये तो माया नगरी है, सब लोग कहते हैं, वो कह रहे थे, सब लोग कहते हैं मुंबई तो माया नगरी है, जो तो जीव माया में फंसा हुआ है, बहुत ही प्रलोभन है, जो भी तामसिक राजसिक के लिए जो कुछ भी व्यवस्था चाहिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ बनाई गई है, इसलिए सब सोचते हैं हम तो माया नगरी में है। परंतु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहे, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने श्री राधा राज बिहारी को प्रतिष्ठापना की है, वो साक्षात प्रभुपाद जी के द्वारा राधा राज बिहारी यहाँ पे विराजमान है, इसलिए ये माया नगरी नहीं है, ये क्या है? धाम है, मुंबई धाम की जय। तो ये मुंबई धाम है, इसलिए आप भयभीत मत होइए, नहीं तो कल इस प्रवचन का प्रभाव सब पे होगा और सब लोग जंगल में जाना शुरू कर देंगे। हम राजसिक भाव में नहीं रहना चाहते हैं, सात्विक भाव में रहना चाहते हैं, सब लोग जंगल में रहना शुरू करेंगे। परंतु प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से ये मुंबई भी धाम है, भक्तों का संग यहाँ पे भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ कहा गया है, भागवतम में वर्णन है कि जो वन में रहते हैं वो सात्विक रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं वो सॉरी जो जंगलों में रहते हैं वो सात्विक, वन में रहते हैं वो सात्विक है, जो शहरों में रहते हैं वो राजसिक है, जो होटलों में रहते हैं वो बार एंड रेस्टोरेंट होटल लॉजिंग बोर्डिंग क्या क्या है, जो यहाँ पे रहते हैं वो तामसिक होते हैं, उसके आसपास भी यदि रहते हैं कोई रहता है उसके आसपास बार एंड रेस्टोरेंट, इसमें जो कोई भी रहता है या उसके आसपास में जो कोई भी रहता है वो तामसिक है, तामसिक वातावरण में रहता है, तो हमको इसमें भी नहीं रहना। यदि हम उसमें रह रहे हैं तो रोज सुबह दोपहर शाम त्रिसंध्या तीनों काल भगवान का जप अवश्य करना है, भगवान के नाम का, और रोज घर में धूप दीप से भगवान की आरती करना है। यदि कोई भी इसके आसपास में रहता है तो भगवान की धूप दीप से तीनों समय आरती कीजिए, भगवान का नित्य जप कीजिए, तो इसका प्रभाव नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं, भागवतम में कहा गया है। तो इस प्रकार से इन तीनों जगह पे जो रहते हैं वो तो राजसिक तामसिक और सात्विक है, परंतु जो मंदिर में रहते हैं वो, जो मंदिर में रहते हैं वो निर्गुण है, उनके ऊपर कोई गुण का प्रभाव नहीं। सोच सकते हैं मंदिर में रहने के लिए कितना भाग्य चाहिए, कितने शुद्ध कर्म चाहिए, कितने जन्मों के कर्म चाहिए जिसकी वजह से हमको मंदिर में रहने का अवसर प्राप्त हो। जो लोग मंदिर में रहते हैं वास्तव में शुद्ध साधु हैं, वो निर्गुण में रहते हैं, भागवतम कह रहा है। जो मंदिर में रहते हैं वो निर्गुण में रहते हैं, शुद्ध सत्व के स्तर पे है, इसलिए हम नित्य मंदिर में जाना चाहिए, और जो मंदिर में रहते हैं उन सभी को दंडवत प्रणाम करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हम शहर में रहते हैं, अनेक प्रकार के प्रभाव हमारे मन पे दिन भर में होते रहते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य दिन भर करते हैं, अनेकों प्रकार के विचार मन में दिन भर आते हैं, सैकड़ों अब जो लाखों विचार आते हैं, और सारे विचार कैसे होते हैं, इंद्रिय तृप्ति के। कभी विचार रेयरली कभी आता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। आज सुबह ऑफिस का टाइम 8:30 बजे ऑफिस का समय होता है, 8:30 बजे से ही हमको दिमाग में मन में यही विचार चलते रहता है कि अभी यहाँ से लोकल में जाएंगे या गाड़ी में बस में जाएंगे, जिस किसी से भी ऑफिस में जाके ये करना है वो करना है वो करना है, अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करना है, या इंद्रिय तृप्ति के संबंध में जो कुछ भी है वो सारे कार्यकलाप पूर्ण करना है, परंतु भगवान की सेवा करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को सारे कर्मों के केंद्र में रखना है, ये सब बात हम बराबर उसी समय भूल जाते हैं जिस समय हमने भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मंदिर में जो भक्त रहते हैं वो पूरे दिन भर केवल और केवल क्या करते हैं, उल्टा कार्य हमारे से। हम दिन भर इंद्रिय तृप्ति के संबंध में जो कुछ भी विषय वस्तु है या विचार है उनके बारे में चिंतन मनन करते हैं, और जो मंदिर में रहते हैं वो पूरी सुबह मंगल आरती से तो शयन तक भगवान की सेवा कल और कैसे अच्छी की जा सकती है मेरे द्वारा, इसका चिंतन करते रहते हैं। कितना फर्क है। इसलिए मंदिर में जाके उनका प्रणाम, उनको प्रणाम करके नित्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। संग करना अर्थात बाजू में जाके बैठ के आना, ऐसा नहीं अरे आज दो चार प्रभु जी दिखे प्रसाद ले रहे थे उनके बाजू में जाके प्रसाद लिया और आ गया, वहां हो गया संग, हरि बोल अभी तो मुझे संग मिल गया, ऐसे नहीं। कैसे, भागवत गीता में श्लोक है, क्या श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न शास्त्र के आधार पे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रश्न पूछना चाहिए उनको। किस लिए प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न किस लिए पूछना चाहिए, प्रश्न पूछते वक्त दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं कितना अच्छा प्रश्न पूछ सकता हूं, अब मैं देखता हूँ जो बोलने वाले कितना अच्छा जवाब मुझे देते हैं, मैं भी जरा देखूं। या भौतिक इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाने के लिए क्या करूं प्रभु जी बताइए जरा। मुझे और इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन होना है, कुछ उपाय बताइए। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, बताइए कुछ ऐसा। ये प्रश्न पूछना नहीं है, ये संग नहीं है, ये सेवा भी नहीं है। प्रश्न इसलिए पूछना है कि प्रश्न पूछने के पश्चात मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। मैं साधुओं को संतों को प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न पूछने के पश्चात मुझे कुछ पता चला और आध्यात्मिक प्रगति हुई, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो आगे और वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, जो आसक्ति रहित करता होता है, आसक्ति जिसको अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति रहित कर्म करने वाला सात्विक होता है। इसका आवाज बढ़ाइए। आसक्ति रहित कर्म जो होता करता है वो सात्विक रहता है। अब आसक्ति रहित अर्थात क्या, आसक्ति क्या है? आप कहेंगे रोज के जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए जो कुछ करना है वो तो करना ही है। आसक्ति और जरूरत, इसमें क्या अंतर है? अटैचमेंट एंड नेसेसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस? इसके पहले हुआ है, पहले अध्याय में बहुत विस्तार से, सब भूल गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आसक्ति अर्थात भगवान को पूर्णतः भूल जाना और स्वार्थ को पूर्णतः स्मरण में रखना, भौतिक स्वार्थ अर्थात इंद्रिय तृप्ति। आसक्ति में व्यक्ति के सामने केवल और केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ भी कार्यकलाप या विचार होते हैं उसको आसक्ति कहते हैं। और नेसेसिटी यानी जरूरत, जरूरत उसको कहते हैं जिसमें भगवान का स्मरण होता है। आसक्ति में भगवान का स्मरण नहीं होता है, इंद्रिय भोगों का स्मरण होता है, जरूरत में भगवान का स्मरण होता है। तो अब इसके बाद आप ध्यान से समझिए सुनिए और उसका उपयोग कीजिए अपने जीवन में। जब भी कभी भगवान का स्मरण नहीं होता है तब तुरंत समझ जाना कि मैं आसक्त हो रहा हूं, और जब भी भगवान का स्मरण होता है समझ जाना ये मेरी जरूरत है। जो कार्य करते वक्त जो इच्छा, आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए मुझे मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, चाहिए 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 चाहिए, बस चाहिए। बीच में कोई आया तो उसको खत्म कर दूंगा यदि वो नहीं मिला तो यह आसक्ति है। परंतु जो मेरी जरूरत है, मुझे ये चाहिए, कृपा करके हे भगवान आप ही देने वाले हो, आप ही सब कुछ सर्व कारण कारणम, मैं आपको समर्पित हूं, आपको जो अच्छा लगता है जो मेरे लिए कृपा करके कीजिए। मांगना है तो भगवान से इस प्रकार से मांगिए, जो भगवान चाहते हैं वो कीजिए। बार बार मैं कहता हूं इस बात को, बार बार हम चर्चा करते हैं, तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, यदि तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तुम चाहते हो, पर यदि तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो होगा वही जो मैं चाहता हूं, भगवान कहते हैं। अर्थात तुम कितना भी इंद्रिय भोग आसक्त हो, बहुत आसक्त हो, बहुत आसक्त हो, ये चाहिए चाहिए, गाड़ी बंगला कार सब हो गया, अब हेलीकॉप्टर चाहिए चाहिए चाहिए, धन चाहिए धन चाहिए, सब जगह व्यापार की दृष्टि, जहां तहां जाएंगे व्यापार, सब जगह व्यापार। आपको एक एक कथा पता है, लकड़े वाला, तो बताइए वहां पे भी स्मशान में भी व्यापार करना चाहते हैं व्यक्ति। तो ये जो भाव है ये इंद्रिय तृप्ति का भाव है, यह आसक्ति है, इसमें भगवान को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत भूख लगी, काम पे गए हैं, दिन भर ज्यादा काम हो गया ऑफिस में कुछ, और ऑफिस से घर पे आ गए, बड़े बहुत तेज भूख लग गई है। घर पे फोन करके बता दिया कि सब प्रसाद रेडी रखना, तैयार रखना है प्रसाद, हमको जरा एक मिनट भी डिले नहीं चलेगा। जैसे ही आए बस बैठ गए थाली सामने और खाना शुरू किए। कम से कम पहले 3-4 मिनट तो इतने खाने में दंग थे कि एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ। होता है क्या? सोचिए थोड़ा, मैं तो अपने बारे में बता रहा हूं, आप भक्त हैं, पर ऐसा हो जाता है कि इतना वो खाने पे 100% ध्यान होता है। कहेंगे आप, प्रभु जी प्रसाद ले रहे, क्या ऑफेंस है? प्रसाद ही तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रसाद ले रहे इसीलिए कोई ऑफेंस नहीं है, पर प्रसाद नहीं ले रहे तो गड़बड़ है। प्रसाद में भी हम क्या कहते हैं, प्रसाद को क्या कहते हैं? प्रसाद खा रहे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑनर प्रसादम, प्रसाद पाइए, प्रसाद का ऑनर कीजिए। ऑनर प्लीज प्रभु जी, ऑनर प्रसादम फर्स्ट, प्रसाद का ऑनर कीजिए। अर्थात ऑनर कैसा करेंगे? बैठ गए और शुरू तो कैसा करेंगे ऑनर? महाप्रसाद तो बोलते ही है, इतना देर तो ज्यादा हो जाएगा। वो महाप्रसाद तो बोलना ही चाहिए, पर जिस स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूं उस स्थिति में महाप्रसाद भी नहीं याद आया तो कम से कम भगवान का प्रणाम कीजिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। ऑनर करना उसको कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, ये आदर करने वाली बात है। और फटाक से बैठ गए खाके खाने के लिए, ये आदर करने वाली बात नहीं है, ये अनादर है। तो इसलिए आसक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति कहते हैं जिसमें हमारे विचार केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होते, बस इंद्रिय तृप्ति। तो वैष्णव सावधान, अपने आप को हमेशा चेक करते रहना चाहिए अपने मन, कीप वॉच ऑन योर माइंड एंड ईगो। मन और अहंकार के ऊपर हमेशा वॉच रखिए, अपने ही, दूसरों के नहीं। दूसरों के रखोगे तो अपना बढ़ जाएगा। दूसरों के मन पे, दूसरों के विचारों पे, दूसरों के अहंकार पे वॉच रखोगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा अहंकार और सारे अवगुण अनर्थ। इसलिए अपने ही अहंकार और मन के ऊपर वॉच रखिए कि क्या आसक्त हो रहे हैं या ये हमारी जरूरत है। तो जरूरत नेसेसिटी में हमको भगवान का स्मरण होता है, अटैचमेंट में हमको भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो जो आसक्ति रहित करता है, जो अनअटैच्ड है, वैराग्य है, रिनंशिएट है, वैरागी है, डिटैच्ड है, वो क्या है? वो सात्विक है। भागवतम के अनुसार, 11वें स्कंद के अनुसार, जो राग द्वेष से भरा पड़ा है वो क्या है? राजसिक है। जिसके अंदर राग द्वेष, राग द्वेष मतलब राग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, और अनुराग अर्थात, राग अर्थात अटैचमेंट आसक्ति, और अनुराग अर्थात नहीं, अनुराग अर्थात भी आसक्ति है पर दिव्य आसक्ति। अनुराग अर्थात भगवान के प्रति आसक्त, और राग अर्थात भौतिकता और इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त। तो अनुरागी होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है राग और द्वेष वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर राग और द्वेष है, मत्सर है, सारे आतंकवादी अंदर भरे पड़े हुए हैं, सारे बड़े बड़े टेररिस्ट, भयानक टेररिस्ट अंदर भरे पड़े हैं, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, द्वेष, सब। वो कौन है? राजसिक है। और सब कुछ जानता है परंतु भगवान के उपदेशों के विरुद्ध जो चला जाता है, एकदम विरुद्ध जीवन यापन करता है, ऐसा कर्म करने वाला। देखिए ये कर्ता की बात हो रही है, जो कर्म करते हैं, हम सब कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान वही तो बोल रहे कर्म करो, अभी तो यही बोल रहे भगवान फिलहाल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम
राम हरे हरे। तो ऐसे कर्म करने वालों की व्याख्या भागवतम के 11वें स्कंद में इसी के संबंधित है इस श्लोक के, कि आसक्ति रहित कर्म करने वाला सात्विक है, राग द्वेष युक्त कर्म करने वाला राजसिक है, और सब कुछ भूलने वाला तामसिक है। इसलिए भूलिए मत, सब कुछ भूलने वाला तामसिक है। इसलिए तो बार बार हम एग्जाम लेते हैं, अभी तक भी सभी ने आंसर पेपर नहीं दिए, कितने 50% लोगों ने दिए अभी तक। आज तो 25% अब्सेंट है, उनको लगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर पेपर का, 25% से ज्यादा अब्सेंट है, पेपर भी नहीं दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते। भगवद गीता का प्रयोजन है सारे संसार के सारे जीवों को ज्ञान देना, किसी को तामसिक भाव में नहीं रखना है, भगवद गीता का ये प्रयोजन है। यदि हम भूल गए तो कैसा ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो भूलते ऐसे करता ऐसे कर्म करने वाले लोग जो भूलते हैं, जिनको भूलने की आदत है, क्या भूलने की, उनसे कभी आप लाख एक दो चार पैसा उधार ले लो, भूलेंगे क्या? वो नहीं भूलते। भूलते क्या है? भगवान को। मतलब ऐसे करता जो भगवान को भूलते हैं, या भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को भूल जाते हैं। सॉरी, वो कौन है? तामसिक है। हमको तामसिक भी नहीं रहना है, राजसिक भी नहीं रहना है, सात्विक भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? शुद्ध सत्व चाहिए। तो क्या करना होगा? कौन सा करता है जो शुद्ध सत्व के स्थिर स्तर पे है, इन तीनों गुणों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं है? तो जो भगवान श्री कृष्ण के आश्रित है, जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले चुका है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, वो करता वो कर्म करने वाला व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, तीनों गुणों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, भले ही वो कुछ भी कर्म करते रहे, अपना धर्म के अनुसार कर्म करे, परंतु आश्रय श्री कृष्ण का प्राप्त है तो आश्रय ले रखा है भगवान का, सेवा करते हैं भगवान की, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होगा। हम भागवतम में देखते हैं भरत महाराज, भगवान के स्मरण में रहते थे, भगवान का स्मरण करते थे नित्य, और स्मरण करते करते कभी आसक्त हो गए हिरण से, वो आसक्ति के कारण हिरण भी बन गए, परंतु हिरण बने थे हिरण की अवस्था में भी उनको भगवान का स्मरण होता था। बताओ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हिरण की अवस्था में भी उनको भगवान का स्मरण होता था। तो इससे बुरी अवस्था हमारी हो सकती है? हम कई बार कहा जाता है कि प्रभु जी कर्म करते वक्त, काम करते वक्त ऑफिस में ऐसा भगवान का स्मरण वगैरह कुछ नहीं होता है, बॉस दिखता है सामने 24 घंटे, रात में भी घर पे जाते हैं तो भी सपने में बॉस दिखता है। तो प्रभु जी इस प्रकार से यदि होगा तो कैसे कृष्ण को स्मरण करेंगे, कैसे कृष्ण का आश्रय प्राप्त करेंगे? भरत महाराज ने श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त किया तो हिरण बन गए, हिरण की अवस्था में भी उनका आश्रय कायम था, भगवान का स्मरण कायम था। और तो हमारा तो कोई इतनी विपरीत दशा हमको नहीं आए कि हिरण वगैरह नहीं बनेंगे हम, मतलब एटलीस्ट अभी तो भी रोज का काम करते वक्त हम बाद में क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमारे भाव के ऊपर निर्भर है, परंतु बस ऑफिस में काम कर रहे तुरंत हिरण बन गया, ऐसा तो नहीं होगा है? तो उससे भयंकर दशा तो हमारी नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो निरंतर ऐसा करता, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म तो करते रहता है परंतु भगवान को, भगवान का आश्रय प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति को गुणों का प्रभाव उसके व्यक्ति पे नहीं होगा। बाकी लोगों के ऊपर गुणों का प्रभाव हो सकता है, तो हमको गुणों का प्रभाव चाहिए हमारे ऊपर, चाहिए कि नहीं चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जिसकी श्रद्धा है वो व्यक्ति सात्विक करता है, वो सात्विक स्तर पे। आध्यात्मिक विषयों में जिसकी रुचि है वो सात्विक अवस्था में है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा आपका कीर्तन, आप लोगों का कीर्तन हमको बहुत अच्छा लगता है, भगवान का नाम बड़ा अच्छा लगता है, बस इतना ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। अच्छा लगना, सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा कैसे, अच्छा लगता है बस कानों को, शब्द बहुत अच्छा लगता है, फिर भी उसको आध्यात्मिक बातों में, आध्यात्मिक विषयों में रुचि है तो वो सात्विक करता है। जिसकी सकाम कर्मों में ही केवल रुचि है, जिस कर्ता की सकाम कर्मों में ही रुचि है वो राजसिक है। देखिए राजसिक और सात्विक का बड़ा विस्तारित वर्णन है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो जो सकाम कर्म करता है ऐसा कर्ता क्या है? जिसकी केवल सकाम, मतलब कर्म करो फल पाओ, बस कर्म करो तो फल मिलेगा, बाकी क्या करने का है आपको? अच्छे कर्म करो, खत्म। अपने अपने कर्म अच्छे से करो, किसी को भी दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, सभी के साथ अच्छे रहो, हो गया कर्म, अच्छे कर्म, सकाम कर्म, उसका आपको फल मिलेगा, अच्छा वो फल को चखो, बस हो गया। तो ये इतने अच्छे कर्म तो गधा भी करता है, डोंकी है कि नहीं, वो भी क्या करता है अपना काम जो बताया गया है नीचे मुंडी करके पूरा काम करता है, गर्दन उठाता भी नहीं है, अपने जो ड्यूटी है पूरी अच्छे से करता है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है, सकाम कर्म। क्योंकि उसको पता है जब मैं इतना बोझा दिन भर दिन भर 200-400 गोनी यहां से वहां मैं 10 किलोमीटर उठा के पटक दूंगा, 200 गोनी 200 क्विंटल समझ लीजिए, एक बार में एक क्विंटल, तो 200 क्विंटल का जो बोझा है वो एक जगह से मैं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, एक जगह से दूसरी जगह पटक दूंगा, तो क्या होगा शाम को जब मैं वापिस मेरे मालिक के पास जाऊंगा ना तो मुझे कुछ घास खाने को देगा। गधा है ऐसा ही सोचता है, मनुष्य क्या सोचता है, दिन भर मैं इतना कार्यकलाप करूंगा उल्टा पुलट, मेंटल फिजिकल व्हाटएवर, इतना उल्टा पुलट करूंगा, फिर कुछ दिन के पश्चात मुझे उसका फल मिलेगा जो मैं चखूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस केवल यही है, ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं, नहीं तो आप मुझे बाहर निकलते से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओनली डिफरेंस इज पैरों का डिफरेंस है, उनको चार होते हैं हमको दो होते हैं, परंतु हम यदि वास्तव में अंतर रखना चाहते हैं तो वो अंतर यह है कि सकाम कर्म में ही पूरी श्रद्धा रखना ये ठीक भाव नहीं है, ये राजसिक भाव है जो हमको आसक्तियों के बंधन में बांध देता है, वो ऐसा रस्सा है, ये बहुत बड़े भयंकर रस्से हैं तीनों, रजस सत्व और तम, ये ये तीनों जो रस्से हैं, गुण मतलब रस्से, बहुत बड़े बड़े हेवी रस्से हैं, ये हमको बांध देते हैं कस के, इतना कस के बांध देते हैं कि जैसे घोड़े को वो लगा देते हैं ना, ऐसा क्या कहते हैं उसको, झापड़, ऐसा घोड़े को, घोड़ा जो टांगे को लगा रहता है उसको इधर उधर का कुछ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसको ऐसा बांध देते हैं और बिल्कुल सीधा ही रास्ता देखता है ऐसे। वैसे ये तीनों गुण जो है, तीनों गुणों के रस्से ने हमको इस तरह से बांध के रखा है कि हमको केवल हमको जो दिखता है वो है काम, 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 .com वो भी काम, 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 इतना काम है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए भी हम बेकाम हो जाते हैं, इतना काम, क्योंकि ये तीनों गुणों के रसों ने बांध रखा है, केवल वही पिक्चर दिखाते हो, कर्म, एक्शन, बस। हमको 2400 घंटे, रात को दिन को 2400 घंटे काम दिखता है। तो ये जो भाव है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए है और ये भाव दुर्योधन का है। परंतु जो जो व्यक्ति सात्विक गुण में है, राजसिक गुण में है और तामसिक गुण में, तीनों गुणों में है, उनमें अंतर क्या है? केवल अंतर यह है कि यह जो तामसिक, जो राजसिक व्यक्ति है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, यह व्यक्ति द्वेष रखता है मन में, ईर्ष्या रखता है। सात्विक व्यक्ति केवल इस बात को नहीं रखता, काम वही करता है। अब तामसिक व्यक्ति, ये तो बड़ा भयानक है, इसको तो कोई भी आध्यात्मिक कार्य में विश्वास ही नहीं होता। ऐसा करता जिसको कोई भी आध्यात्मिक कार्यों में कुछ भी श्रद्धा नहीं और अधर्म में फुल श्रद्धा है, पूरी, हा, पूरी श्रद्धा अधर्म में है और धर्म में जीरो श्रद्धा है, तो ये तामसिक व्यक्ति है, तामसिक गुणों वाला है। परंतु जो श्री कृष्ण की सेवा में है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, ऐसा करता इन तीनों गुणों के ऊपर है। अर्जुन भगवान कृष्ण की सेवा में ही है, तो यह तीनों गुणों के ऊपर है। कितने गुण हो गए, कितने उदाहरण हुए, राजसिक, सात्विक, तामसिक के, तीसरा उदाहरण हो गया, अभी लिखा आपने, लिखिए, प्रश्न पूछा जाएगा टेस्ट में। जो व्यक्ति, देखिए, वास्तु जहां रहता है, निवास, निवास के पश्चात क्या है, कर्म, जहां रहना, कर्म करना, उसके पश्चात है श्रद्धा मतलब विश्वास, विचार, और अब है आहार, रजस, सॉरी, सत्व, रजस, तम, इसमें जो चार मुख्य उदाहरण है, कौन सा चार उदाहरण है, पहला उदाहरण है निवास, दूसरा उदाहरण है कर्म, तीसरा उदाहरण है विचार, चार अर्थात श्रद्धा, चौथा उदाहरण है आहार। ये चारों उदाहरण डिफरेंस बताते हैं। शुद्ध स्वास्थ्य, एकदम स्वास्थ्यकर होने के लिए, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा मुझे रखना है, तो स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए शुद्ध भोजन करना होगा। जो शुद्ध भोजन करते हैं वो सात्विक है, जो शुद्ध भोजन करते हैं वो सात्विक है, जो एकदम तवे का, तवे के ऊपर का गरम गरम जिनको चाहिए, बोलते ना, तवे का गरम, हॉट, गरम चाहिए तवे के ऊपर का, जो तवे के ऊपर का गर्म या बासा कल का ठंडा, ये जो खाते हैं युक्ताहार विहार से आगे भगवान कहेंगे। पर जो इस प्रकार का अन्न खाते हैं, कैसा, जो एकदम घाट है, गर्म है, या जो बासा या एकदम ठंडा है, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ, वो राजसिक है। वही अन्न खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंदर राजसिक भाव बढ़ जाता है भय भयंकर तरीके से। ये राजसिक नहीं खाना चाहिए, अर्थात बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं खाना चाहिए। भगवान कहेंगे, उसका विस्तार से वर्णन आगे होगा भगवद गीता में। और जो लोग अशुद्ध भोजन करते हैं, जो अशुद्ध भोजन करते हैं वो तामसिक है। अशुद्ध भोजन अर्थात मांसाहार में क्या क्या आता है, प्याज लहसुन, ये सब मांसाहार है। और इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी, ये सब जो है ये अशुद्ध भोजन है। ये अशुद्ध भोजन करने वालों को तामसिक कहा गया, उनके ऊपर तामसिक प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। यार तामसिक, होटलों में खाना, ऐसे होटलों में जहां पे कौन ये बना रहा है पता ही नहीं है, कौन बना रहा है ये सब, नोबडी नोज। और जाके बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं, जो थाली में खाते हैं पता नहीं कितने लोगों ने उस थाली में खाया होगा, और वो लोग कैसे हो गए, जो स्पून जो चम्मच उसमें खाते हैं वो चम्मच पता नहीं कितने लोगों के मुख में गया होगा, और कैसे लोगों के मुख में जाके आया होगा, कितने लोगों ने उस चम्मच से खाया होगा, किस प्रकार के लोगों ने वो खाया होगा, और अब हम उस चम्मच से खा रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, वेजिटेरियन होटल है। चल जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं केवल बाहर खाना आपको धाम में अलाउ, धाम में जाते हैं आप, यात्राओं में जाते हैं तो जो धाम होता है वहां पे जो लोग बनाते हैं वो वास्तव में कुछ धाम का उनके ऊपर प्रभाव रहता है, भगवान का प्रभाव रहता है, वो स्वयं बड़े भाग्यशाली है, इसलिए वो जो कुछ भी बनाते हैं वहां पे आप, क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है, वहां पे आप खा सकते हैं, वो भी थोड़ा देख परख के। अन्यथा, क्योंकि इसके पहले हम चर्चा किए थे, शायद काउंसलिंग मीटिंग में किए होंगे, संसार में जितने भी भयानक रोग है उसमें से सबसे बड़ा भयानक जो रोग है वो रोग होटल में काम करने वाले, विशेषकर जो कुक होते हैं ना, कुक गैस के सामने खड़े रहते हैं, बीड़ी पीते पीते, इधर बीड़ी पीते इधर कुछ कुक करते, सब्जी काटते, उन लोगों को होता है। एक अमेरिकन मैगजीन कोई इंस्टीट्यूट है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, उस इंस्टीट्यूट ने ये सर्वे किया था कि जो सबसे बड़े भयानक रोग है HIV वगैरह जैसे, वह रोग इन लोगों में ज्यादा पाए गए। कौन लोगों में, जो वो काम करते हैं कुकिंग। शास्त्र कहता है कि जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम बनाते हैं, तो सबसे प्रथम अग्निदेव का आवाहन करते हैं, और वो अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। क्यों प्रज्वलित रहते हैं, क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है, हमारा भाव देख के अग्निदेव प्रसन्नता से प्रसन्न रहते हैं, और बड़ी प्रसन्नता से वो जो भी कुछ हम कुक कर रहे पका रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से वो पका देते हैं अग्निदेव। वो अग्निदेव उस अन्न में हमारे भाव को मिक्स कर देते, इसलिए मंदिरों में प्रसाद लो और बाकी दुनिया में कहीं पे भी प्रसाद लो, देयर इज अ डिफरेंस, भाव अंतर है भाव का। तो जब ये लोग करते हैं, कुकिंग करते हैं, अग्नि जलाते हैं, इनके अंदर जो भाव है वो भाव अग्नि के साथ, अग्नि क्या कर रहे हैं उस बर्तन में जो कुछ भी रखा हुआ है उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो भाव मिक्स हो रहा है उसमें। और हम कहते हैं प्रभु जी वेजिटेरियन होटल है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतना भी कड़क नहीं होना चाहिए, जाए तो जाए कहा। बहुत से हम भक्त हमको अनेक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आप हम टूर पे है, ऑफिशियल टूर पे, और कहीं का नाम बता देते हैं एकदम, और कोई सिंगापुर या ऐसा टाइप। कभी अचानक एक दिन मुझे फोन आया था, कुछ भी नहीं है क्या खा सकते, मतलब राइस तो प्रभु जी सारी दुनिया में मिलता है, दूध भी सारी दुनिया में मिलता है, तो आप खुद बना लीजिए, पड़ोस वड़ोस में जाइए उसको बोलिए थोड़ा राइस, एक दो तीन दिन की बात है। नहीं तो आजकल तो इतनी सुविधा है कि जिस होटल में रुके हैं वो होटल वाले उनका व्यवस्था कर देते, किचन या कोई कुकर, इलेक्ट्रॉनिक कुकर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसमें चावल डाल दो हो गया, थोड़े दिन के लिए सहन करना चाहिए बस। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए उस होटल में जो कुछ भी कुक कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनका भाव क्या है वो अमेरिकन मैगजीन बता रहा है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा भयंकर रोग जो कि स्प्रेड होता है, होते रहता है, तो इन लोगों का भाव क्या होता होगा कुकिंग करते वक्त, और हम उसको प्राशन करते हैं। इस प्रकार से जो खाते हैं भगवान यहां वर्णन, श्रीमद् भागवतम का यह वर्णन है, तो इस प्रकार का अन्न जो खाते हैं महातामसिक होते हैं। अन्न दोष बड़ा भयंकर दोष है, बड़ा भयानक दोष है ये। जब भीष्म पितामह अंतिम समय पे बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, सब युद्ध समाप्त हुआ, द्रौपदी और पांडव सब उनका दर्शन करने के लिए गए, और जो भीष्म देव ने देखा युधिष्ठिर महाराज को, तो युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव कुछ धर्म के ऊपर उपदेश करने के करने लगे, तो द्रौपदी जोर से हंसने लगी, बहुत जोर से हंसने लगी। तो भीष्म पितामह ने उनको बुलाया पास में, ये पुत्री तुम क्यों हंस रही हो मेरी बात पे। युधिष्ठिर महाराज स्वयं पूछे कि आप मुझे कुछ राज धर्म का उपदेश दीजिए, अभी मैं राजा हो रहा हूं, तात्श्री कृपा करके मुझे राज धर्म का उपदेश दीजिए। इस बात पे द्रौपदी हंस पड़ी, तो भीष्म देव कहते कि क्यों तुम हंसी हो। युधिष्ठिर महाराज स्वयं पूछते हैं कि तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, तो द्रौपदी कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस समय धर्म की नितांत आवश्यकता थी, जिस समय एक अबला नारी का नारी पे संकट था, उस समय इनका धर्म कहाँ गया था, इनके पास तो मैं इनके निकट जाके इतनी प्रार्थना की कि मुझे बचाइए, इतनी प्रार्थना की व्याकुल होके, और मैं प्रार्थना कोई अधर्म पे आधारित नहीं की, धर्म पे आधारित प्रार्थना की, धर्म की ही रक्षा करने के लिए इनको प्रार्थना की, तब तो इन्होंने उस धर्म का कोई उपदेश या कुछ भी नहीं समझा। और आज आप इनसे धर्म का उपदेश लेने जा रहे हैं और ये आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं, इस बात को सुन के मुझे बड़ा हंसी आ रहा है, कि ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हंसी आई। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि एकदम सही बात है, वास्तव में अर्जुन ने मुझे बहुत उपकृत किया, अर्जुन के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, उसने मुझे इतने बाण मारे, इतने बाण चलाए, इतने बाण से मुझे छिन्न विच्छिन्न कर दिया है, इतना रक्त मेरे शरीर से बह गया है, अभी शरीर में रक्त ही नहीं है, सारा रक्त बह गया है, क्योंकि वह रक्त जो है अशुद्ध खाने से वह रक्त मेरा बन गया था, दुर्योधन का मैं खाता था, दुर्योधन का खाने से मेरा रक्त अशुद्ध हो गया, इसलिए मुझे धर्म अधर्म की बात तो बहुत दूर, मैं स्वयं पूरा अशुद्ध हो गया, इसलिए धर्म की रक्षा कर नहीं पाया, उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। परंतु आज अर्जुन ने इतने बाण चलाए कि सारा रक्त शरीर में का निकल गया, बह गया है, अब शरीर में रक्त नहीं है, इसलिए अब मैं धर्म की बात या धर्म के उपदेश में महाराज युधिष्ठिर को दे सकता हूं। तो भीष्म पितामह कह रहे कि क्योंकि मेरा रक्त अशुद्ध हो गया था, क्यों हो गया था, खाने से, तामसिक खाना। तो हम तो कितने प्रकार का खाना खाते रहते हैं, फास्ट फूड, चाइनीज तो हमको कभी समझ में नहीं आया, चाइनीज फास्ट, ये सब जो कुछ भी है हमारे भारतीय लोगों के लिए नहीं है। भारतीय, भारत भ का अर्थ होता है भगवान और रत का अर्थ होता है तल्लीन, भा का अर्थ है भगवान में, रत का होता है तल्लीन। जो लोग भगवान में तल्लीन होते हैं वास्तव में मूलतः जो शुद्ध सत्व के स्तर पे होते हैं, ऐसे लोग चाइनीज और जापनीज और इटली ये क्या क्या खा रहे हैं, तो किस प्रकार से भगवान में तल्लीन रहेंगे। ये सब फास्ट फूड नहीं है, भ्रष्ट फूड है, इसलिए इस बात का सर्वप्रथम ध्यान रखिए, खाएंगे तो प्रसाद, प्रभुपाद जी कहते हैं, खाएंगे तो प्रसाद, नहीं तो थोड़ी तपस्या कर लीजिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा इस बात को, रहना कहाँ चाहिए, कर्म कौन से करना चाहिए, विचार क्या होने चाहिए और खाना क्या चाहिए, कौन सा निवास राजसिक तामसिक है या सात्विक है और कौन सा उसके भी ऊपर का है, कौन से कर्म शुद्ध सत्व के स्तर के कर्म है, कौन से कर्म राजसिक तामसिक सात्विक है, कौन से विचार राजसिक तामसिक या सात्विक है या कौन से विचार उससे भी ऊपर शुद्ध सात्विक स्तर पे है, और कौन सा भोजन तामसिक राजसिक सात्विक है और कौन सा भोजन शुद्ध सात्विक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद निर्गुण है, इसके ऊपर कोई गुणों का प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आत्मा से जो हमको सुख प्राप्त होता है, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक जो सुख प्राप्त होता है वो सात्विक है, इंद्रिय तृप्ति से जो सुख प्राप्त होता है वो राजसिक है, और निद्रा आलस्य अधर्म से जो सुख प्राप्त होता है वो तामसिक है। इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से जो सुख प्राप्त होता है वो शुद्ध सत्व के स्तर पे है, वह जो सुख है वो निर्गुण है, और वही सुख हमको भगवान कृष्ण के प्रति नित्य आकर्षित करते रहता है। कौन सा सुख? भगवान की सेवा करने का सुख। यहां पे भगवान अर्जुन को यही कह रहे कि अर्जुन चलाओ बाण, अर्थात तीनों गुणों के ऊपर उठो, मैं जो कह रहा हूं वो करो, क्या करो, युद्ध करो, अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करो, अर्थात दिव्य सुख की प्राप्ति करो। अभी समय काफी हो गया, तीसरा पॉइंट बाकी, आगे का नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट